तफसीर। आपने जो कल सबक पढ़ा था उसमें अल्लाह ताला की मिसाल पढ़ी थी कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्थ, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। हर जलवे को देखा तेरे जलवों से मुनव्वर, हर बज्म में तू अंजुमन अरा नजर आया, है ना। तो असल बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जात है वो कैसी है कि कायनात के जर्रे जर्रे में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो नजर आता है। अब आप देखें कि अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द, आपके सामने पावर पॉइंट भी है इस वक्त, और जो सूरत नूर की आयत नंबर 35 से जो है वो चल रही है, और आप में से हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप खुद गूगल पे जाएं, आप इंटरनेट पे जाएं, खुद तलाश करें सूरत नूर की आयात की मुनासबत से, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार कुरान में कह रहे हैं ना कि वलकद अनजलना इलैकुम आयातिन मुबयिनात वमसलम मिन अल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। तो एक चीज को जब आप अपनी आंखों से देखते हैं ना तो आपका ईमान और बढ़ जाता है, और वो चीज ज्यादा जो है वो याद रहती है, परमानेंट आपकी याददाश्त और अमल का हिस्सा बन जाती है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो आसमानों और जमीन में अपने नूर की मिसाल दी है, मसलो नूर ही का मिशकातिन फीहा, उसके नूर की मिसाल तो ऐसी है जैसे कि दीवार के अंदर एक ताक होता है। आप साथ साथ आप पावर पॉइंट भी देखती जाएं, और आप आयात को हम एक दफा दोहरा लेते हैं कल के सबक को, ताकि जो है वो फिर से एक चीज की याद दहानी हो जो हमारे अमल का हिस्सा बन सके। कि आप देखें, आपको दीवार के अंदर जो है वो नजर आ रहा है ना कि दीवार में जो है एक ताक है। ताक के क्या मानी थे, मिशकात के क्या मानी थे, दीवार के अंदर गहरी जगह मैंने आपको बताई थी ना। अब देखिए दीवार के अंदर गहरी जगह है, तीन तरफ से ये कवर्ड है, एक तरफ से जो है ये खुली हुई है, तो ये ताक है। फिर आप इसके अंदर आप देखें कि कमिश्कातिन सीहा, अब ताक के अंदर क्या है, मिसबाह, चिराग, आपको चिराग जलता हुआ नजर आ रहा है ना, अल मिसबाहू फी जुजाजा। तो चिराग तो खुद ही रोशन होता है, लेकिन जो चिराग है वो एक शीशे में है। अब आप देखें कि जो ये आपको जो लैंप नजर आ रहा है, जो चिराग है, अब इसके इर्द गिर्द जो है वो शीशा है ना। और आप देखें कि शीशा कितना साफ सुथरा है, कि शीशे के अंदर से रोशनी छन छन कर जो है वो बाहर आ रही है ना। तो अलमिसबाहु फी जुजाजा, चिराग शीशे में है, अज़ुजाजा तू जो शीशा है ये कितना चमकता हुआ है, कन नहा कौकबुन दुरी दुरीयुन, गोया के वो चमकता हुआ सितारा है। अब आप देखें कि ये शीशा है, और शीशे की चमक अंदर से लाइट की ऐसी है जैसे कि अब आपको मोती नजर आ रहा है ना, जैसे एक सितारा नहीं है जो मोती की तरह चमक रहा हुआ है, जैसे कि मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और जो चमकता हुआ तारा है या मोती है उसकी रोशनी बाहर आती है ना, तो इसकी रोशनी भी बाहर आती है, आ रही है। यू कदू जलाया जाता है, मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन, के ये जो चिराग की ये जो आपने रोशनी देखी, तो दरअसल अल्लाह ताला क्या बात बताना चाहते हैं हमें मिसाल से, कि ये एक मुबारक दरख्त जो जैतून का है इससे ये जलाया जाता है। अब आप देखें कि ये जैतून का दरख्त जो है इसकी तस्वीर है आपके पास, एक बाग है और बाग में ये जैतून का दरख्त है, और इर्द गिर्द जो है वो रोशनी भी आपको नजर आ रही है, और दरख्तों में से जैतून का दरख्त वो दरख्त है जिसको अल्लाह ताला ने मुबारक कहा है ना। ला शर्कियतिन वला गर्बिया, और ये वो दरख्त है जो ना शर्की है ना गर्बी है, इसका मतलब ये है खुले मैदान में है, ऊंची जगह पर है, सुबह से शाम तक इसमें धूप पड़ती है, बाग के वस्त में है, और ऐसे जैतून के दरख्त का तेल जो है बहुत लतीफ होता है, बहुत ज्यादा रोशनी देता है। वो दरख्त जो शर्की गर्बी होते हैं ना उनका तेल गलीज होता है निस्बतन उस दरख्त के जो बाग के वस्त में होता है और सारा दिन उस पर जो है वो धूप पड़ती है। تو یہ مثال ہے کہ لا شرقیۃن ولا غربیۃن یکادو زیتہا یدیو ولو لم تمسسو نار، اور جس کا تیل آپ ہی آپ جو ہے وہ بھڑکتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی آگ نہ بھی اس کو لگائی جائے، کوئی ماچس کوئی دیا سلائی، تو خود ہی بھڑکنے کو تیار ہے، جیسے کہ پٹرول ہوتا ہے، خود ہی جو ہے وہ بھڑک اٹھنے کو جو ہے وہ تیار ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس پوری مثال سے اللہ رب العزت جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ چراغ کی صفت ہے ساری، یہ چراغ کا تیل جو اس کی روشنی ہے، روشنی کی جو شدت ہے، اور روشنی جو ہے اس کا روشنی جو بہت واضح ہے، بہت چمکدار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. اور اس مثال میں روشنی سے مراد نور ہدایت ہے. دو روشنیاں جو ہیں اس کے، نور کے دو معنی لیے گئے. ایک اس کے معنی جو ہیں کہ روشنی، کہ پوری دنیا کو، آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، سب کو اللہ روشن کر رہا ہے، اللہ منور ہے، اور ساری دنیا کو وہ منور کر رہا ہے. سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات جو جگمگ کرتی ہے، جو سانس لیتی ہے، جو اس کا نظام قائم ہے، تو یہ اللہ کے وجود سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی نور کے، ہدایت کے ہیں. تو پوری کائنات اللہ سے جو ہے وہ ہدایت لے رہی ہے، اصل ہادی اللہ ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں زندگی جو ہے وہ کیسے بسر کی جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو پاور پوائنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو اواہن منیب والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے، وہ فوراً نیکیوں کی طرف لپک کر آتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری قسمت میں اتنی ہے. بعض لوگ جو ہیں عمل نہیں کرتے اور سارا جو ہے وہ بہانہ قسمت کا لگاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا تقدیر کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک قدم اٹھا، اس نے ایک قدم اٹھایا تو اٹھا لیا، پھر اس نے، آپ نے کہا دوسرا قدم اٹھا، اس نے کہا میں یہ نہیں اٹھا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ اتنا تیرے ہاتھ میں ہے اور اتنا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے اور پھر کہتے ہیں کہ بس ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نیک بن سکے. تو اللہ تعالیٰ کا جہاں تک عام کھانا پانی ضروریات زندگی کی بات ہے، اللہ مومن اور کافر سب کو دیتا ہے. جہاں ہدایت کی بات ہے نا، اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے طلب رکھتے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو یہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہی لوگوں کی رہنمائی اپنے نور کی طرف کرتا ہے جو کہ خود چاہتے ہیں. اور پھر یہ مثالوں سے اللہ بات کیوں سمجھاتا ہے، آپ کو پاور پوائنٹ کیوں دکھائی جا رہی ہے، کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں تاکہ ایک چیز جو ہے وہ زیادہ یاد کا ذریعہ بن سکے. ویسے تو چشمے تصور میں آپ لایا کریں، لیکن کیا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے کہ کون سیریس ہے، کون نان سیریس ہے، کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا. اچھا پھر جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں یہ دل کی مثال، اب آپ دیکھیں یہ دل آپ کے پاس، آپ کے سامنے بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، دل کے اندر جو ہے نا چراغ جلتا ہے. تو جس مومن کے دل میں ایمان کا چراغ جل جاتا ہے، ہدایت کا چراغ جل جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے النفس المطمئنہ، وہ نفس لوامہ نہیں ہوتا. لوامہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ ملامت کرنے والا، جو گناہ کر کے پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں، یہ درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہوں پر اکسانے والا ہے، نہ وہ نفس امارہ ہوتا ہے، نہ وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے دل میں ہی، اب آپ کو پاور پوائنٹ میں تاک تاک کی شکل دل کی ہے، آپ نے نوٹ کیا اس بات کو، جو تاک ہی بنا ہوا ہے دیوار کے اندر وہ دل کی طرح کا ہے، اور اندر جو چراغ ہے وہ بھی دل کی طرح کا، اور دل کے اندر جو ہے نا وہ اللہ لکھا ہوا ہے. مومن کے دل میں جو ہے وہ اللہ سما جاتا ہے، اللہ رچ بس جاتا ہے، اب اللہ کی یاد رچ بس جاتی ہے، وہ ایمان کی خوشبو جو ہے نا اس کے اندر رچ بس جاتی ہے. تو جس دل کے اندر اللہ کا احساس اتر جائے، اب دیکھیں اللہ لکھنے کا مطلب کیا ہے، कि अल्लाह का एहसास दिल में उतर जाए, तो इंसान अल्लाह से फिर डरता है सबसे ज्यादा, उसकी नाराजगी से अपने आप को बचाता है, और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, एक ही उसका मसला होता है। मैं और आपको कहते हैं ना, बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं, बड़ी मुश्किलात में हैं, क्या बताएं आपको, एक दूसरे के साथ सुबह से लेकर शाम तक क्या रोना रोते हैं, इतनी मुश्किलात है, मियाँ की जॉब नहीं है, बीमारी है, मेहमान, तौबा मेरी उफ, मेहमान और फिर फोन और फिर बच्चे, उन्होंने तो तंग कर दिया है, और पीछे से जो पाकिस्तान इंडिया में रिश्तेदार हैं वो, और फिर यहाँ पे मसाइल जो हैं रहते हुए, और बस फिर और कोई दूसरी मुझे और आपको बात नहीं आती ना। लेकिन वो लोग कैसे होते हैं कि बस दिल के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है, और फिर आपने सारा पढ़ा कि किस तरह वो मस्जिदों में, मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, उनके घर मस्जिद होते हैं, उनका दिल मस्जिद होता है। मोमिन के जिस्म में सबसे नुमाया चीज उसका दिल है, क्योंकि दिल के अंदर ईमान होता है, वो सबसे कीमती है, और आबादी में सबसे सबसे कीमती घर मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में अल्लाह का जिक्र जो है वो किया जाता है। तो ये देख लें, ये हरम की जो तस्वीर है इसमें क्या है कि गोया के अज़्ज़ुज़ाज़तु कन्नह कौकबुन दुरीयुन, के वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो जकात देते हैं, जो नेकियां करते हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि कौकबुन दुरीयुन, चमकता हुआ सितारा है। बिलगुदूवी वल आसाल, जब वो तस्बीह करते हैं सुबह भी नहीं देखते, शाम भी नहीं देखते, तिजारत है या खरीदो फरोख्त है। एन आप क्लास में आने लगी और पाकिस्तान से फोन आ गया, है ना, एन कोई बहुत ही जरूरी काम आपको याद आ गया, जब आप कुरान पढ़ने लगी, नमाज पढ़ने लगी, तो उनको कोई मसूफिया जो है अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। फिर आप देखिए दूसरी मिसाल शराब की है, और शराब के लिए भी आप देखें तो आपके सामने जो है वो क्या तस्वीर है कि आप शराब, आपको मैंने बताया था धोखे को कहते हैं, हर बेहकीकत चीज को कहते हैं, ये आयत नंबर 39 में है, और आपको पावर पॉइंट में भी नजर आ रहा है ना, सड़क है, और सड़क के बिल्कुल एंड पर आप देखें तो रोशनी नजर आ रही है, हालांकि वो भी सड़क ही है, और रोशनी से मुराद के ऐसे लग रहा है जैसे कि पानी है, चमकता हुआ पानी। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो कुफर करने वाले हैं, निफाक करने वाले हैं, उनके अमाल की मिसाल ऐसे ही है, का शराब बिकियती या सबु जमानु मा हत्ता इजा जाहु लम यजिदहु शैयं वजद अल्लाह इंदहु फवफहु हिसाबा वल्लाहु सरीउल हिसाब। इसी तरह आप देखें ये सहरा की तस्वीर है, ऊंट बहुत से हैं, और सहरा के अंदर बहुत सा आपको ऐसे लग रहा है जैसे ऊंटों के आगे आगे पानी है, लेकिन ये क्या है सारा, ये चमकती हुई रेत है जो दूर से पानी नजर आ रही है। तो ये क्या एक धोखा है। तो इंसान की जिंदगी, और जिंदगी में इंसान जो बिदतें करता है, कुफर निफाक और अपनी ख्वाहिशात की पूजा करना चाहता है, रस्म और रवाज समझता है कि इसी में फलाह है मेरी, तो ये सारी चीजें शराब हैं, इनकी कोई भी हकीकत नहीं है, है ना। तो असल बात यही है कि वो दिल जो के ईमान से मुनव्वर होते हैं, तो वो क्या है कि हर हाल में नेकियां जो हैं वो करते चले जाते हैं। और फिर आप देखिए जो समंदर की मिसाल थी, अंधेरों पर अंधेरा के ज़ुलुमातुम बादुहा फौका बाद, तो आप देखें कि समंदर के अंदर अंधेरे का मतलब क्या है कि जो लोग अपने आप को धोखा देते हैं ना शराब के अंदर, वो ऐसे ही होते हैं जैसे अंधेरों में अपने आप को बंद कर लिया, अब हदायत की कोई रोशनी उन तक नहीं पहुंच सकती। तो अंधेरे किस चीज के हैं, कुफर का अंधेरा, निफाक का अंधेरा, रस्मों का अंधेरा और बिद्दतों का अंधेरा, फिर इसके बाद जो है वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स जो हैं वो उनका अंधेरा, गोया के अंधेरों पर अंधेरे हैं, तो कई हदायत उनको फिर समझ आती ही नहीं है ना, और जो खुद हदायत नहीं चाहता तो फिर अल्लाह भी उसको कोई नूर नहीं देता। आयत आज का जो सबक आयत नंबर 41 से है, इसमें क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस्समावाति वल अर्द, क्या तूने नहीं देखा अन्नल्लाह के अल्लाह की, युसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, सीन बाहा तेजी से जो है वो तैरना, तेजी से गुजरना, है ना। तो युसब्बिहु के यहाँ पे दो मानी हैं, एक तो इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना, और दूसरे मानी ये हैं कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना उसको बजा लाना। तो यहाँ पे तस्बीह का लफ्ज जो है वो दो मानी में इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला की इबादत करना और अल्लाह की तस्बीह करना, और दूसरे मानी है जो हुक्म अल्लाह ने दिया है उसको बजा लाना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, किसको कह रहे हैं, मुझे और आपको कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ए गोश और पोस्त के इंसान, ए होश और गोश रखने वाले इंसान, ए अजा रखने वाले इंसान, तू क्या तूने नहीं देखा, क्या तू अपने इर्द गिर्द की दुनिया पे गौर नहीं करता। अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, अल्लाह ताला के लिए कौन उसकी तस्बीह करता है। युसब्बिहू लहू मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो उसकी तस्बीह बयान करता है। और आप देखें कि आसमानों में जो है इससे क्या मुराद है, फरिश्ते और जो अल्लाह की मखलूक है, और वल अर्द जमीन से क्या मुराद है, हर किस्म के हैवानात, इंसान, जिन्नात, चौपाए, परिंदे और दीगर तमाम चीजें। तो ये कह के लहू मन फिस समावाति वल अर्द के आसमानों जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह ताला की बंदगी कर रहा है? और खास तौर पर परिंदों का जिक्र किया। और आप देखेंगे पावर पॉइंट भी आप साथ साथ देखती जाएं कि परिंदे हैं कैसी सफ के साथ जो है ना वो अपने पर को फैलाए हुए उड़ रहे हैं, और यहाँ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वत्वाएरु स्वाफात, और परिंदे जो हैं वो पर फैलाए हुए हैं। और स्वाफात जो है इसके मानी क्या है, स्वाद फाफा सफ से है, और स्वाफात इसके मानी यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से आप देखें कि शद भी है और लंबी से आपको मद भी नजर आ रही है, तो गोया के अल्फाज की ज्यादती मानी की ज्यादती पर दलालत करती है। और इसके मानी क्या है कि सफ बस्ता पर फैलाए हुए परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं। तो परिंदों की तरफ जो अल्लाह ताला ने इशारा किया है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे, खास तौर पर परिंदे फिजा में जब उड़ते हैं तो अपने परों को फैलाकर जो है ना वो उड़ते हैं, तो उनका उड़ना जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। तो इनके परों को फैलाने का क्यों जिक्र किया, कि गोया के अल्लाह के आगे ये इनकी बंदगी की तस्वीर है। हम तो कहते हैं ना परिंदे उड़ रहे हैं, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि बासितातिन, ये जो सौफातिन है ना इसके मानी है बासितातिन, कि ये पर फैलाए हुए हैं, और गोया के परिंदे भी हैवानात की बजाय एक मुमताज मखलूक हैं। क्यों मुमताज, अल्लाह ताला ने इनको कहा कि हैवान जो है ना चल तो सकते हैं पर उड़ नहीं सकते, और ये परिंदे जो हैं ये चल भी सकते हैं, चलना चाहें तो जमीन चलना शुरू कर देते हैं ना, और चाहें तो अपने परों से जो है वो उड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये चलते हैं और जब ये उड़ते हैं तो ये करते क्या हैं, ये अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। और परिंदों का के नगमे, इनका चहचहाना, ये सब जो है वो अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह की जो है वो अतात की जो है वो तस्वीर है। और आप जो हैं सूरत हज में भी जो है वो ये बात आप पढ़ चुकी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं वो परिंदे जो के कायनात के अंदर हैं, और वो कैसे बंदगी करते हैं, जैसे कि सूरत हज की आयत नंबर जो है वो 18 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अलम तर अन्न अल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति वमन फिल अर्दी वश्शम्स वल कमर वन नुजूम वल जिबाल वश्शजरु वद्दवाब वकसीरुम मिनन्नास, है ना। तो इससे भी क्या बात पता चली कि कि ये कायनात के अंदर जो ये बिखरी हुई चीजें हैं सारी ये अल्लाह की हमद और तस्बीह बयान करती हैं। इसी तरह आपने सूरत बनी इसराइल की आयत 44 में 44 में पढ़ा तो सब्बिहु लहू लहुस्समावातु सब्उ वल अर्द तुसब्बिहु लहुस्समावातु तुसब्उ वल अर्द वमन फीहिन وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ اسے یاد نہ کرتی ہو۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے شاہین آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اور کیسے اس نے پر پھیلائے ہوئے، اور یہ بڑی بلندی پر اڑنے والا پرندہ ہے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے نا، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو شاہین بہت بلندی پر اڑتا ہے، تو اقبال کا شاہین کون ہے؟ مومن، مسلمان۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر جو ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نور وہ لوگ پاتے ہیں جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے گھروں کو مسجد بنایا ہے، جو تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی سے روکتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو بھی کیسا ہے نا، کیا تو پرندوں کو نہیں دیکھتا؟ کائنات کے اندر پر پھیلائے ہوئے لائن بنا کر وہ میری بندگی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تصویر ہے اس میں بہت سے پرندے آپ کو اڑان میں نظر آ رہے ہیں نا، اور اس کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں جو ریسرچ سامنے آئی وہ کیا ہے، آپ دیکھیں اڑتے ہوئے کبھی اپنی جو ترتیب ہے نا اس کو خراب نہیں کرتے، پھر اکٹھے ہو کر اڑتے ہیں، پھر ان کے کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے رہنما ہوتے ہیں، اور نیلوں کا سفر یہ طے کر رہے ہوتے ہیں۔ خوراک کی تلاش میں یہ جب اپنی جگہ کو بدلتے ہیں، یا ویسے جب شام ہوتی ہے تو اس وقت کبھی آپ آسمان کی طرف بھی جایا کریں، آسمان کی طرف اپنی نظریں دوڑایا کریں۔ قرتین ینقلب الیک خاشعون وهو حسیر، آپ کی نگاہیں تھک کر ناکام لوٹ آئیں گی، اور آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو لیڈ کرنے والے پرندے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ اندر آ جاتے ہیں، جب لمبا سفر کر کے وہ تھکتے ہیں نا اندر آ جاتے ہیں، اندر والے فوراً آگے جا کر جو ہے نا وہ پرواز کی کمان جو ہے نا اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ چار چار کا ان کا اکثر گروپ ہوتا ہے، چھ چھ کا، چار چار کا، سات سات کا، دو دو، تین تین کا، تو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نا یہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا اڑنا کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ اللہ کا، اللہ کے مطیع ہیں، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اپنے حال سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام دیا ہے نا، یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، میں اور آپ ان کی تسبیح، ان کی تحمید سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو تھے نا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان ساری باتوں سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ ساری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی بندگی بیان کرتی ہیں، ہے نا؟ جیسے پتھروں کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورت نور کہاں زنا کی بات تھی، کہاں قذف کی لیان کی بات تھی، کہاں غزے بسر کی بات تھی، کہاں جو ہے وہ یدربن بخمرہن علی جیوبہن کی بات تھی، اور کہاں جو ہے وہ جب باہر نکلیں تو کیسے چلیں۔ تو عام طور پہ تو بڑے سخت احکام تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرد نہ، ہم نے ان کو فرض کر دیا، ہم نے ان کو نازل کیا، واضح آیتیں ہیں، اور بیچ میں پرندوں کا ذکر آ گیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے نا ایک سوال ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلن قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، ہر پرندے کو یہ پتا ہے، کائنات کی تمام جو مخلوقات ہیں، सूरज चांद सितारे परिंदे हवाएं मौसम फल फूल कायनात का जर्रा जर्रा उन सबको पता है कि उनकी नमाज क्या है। वो मेरी और आपकी तरह थोड़ी नमाज पढ़ते हैं। ये परिंदे पर फैलाए हुए जो उड़ रहे हैं ये अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह की हमद और तस्बीह बयान कर रहे हैं। ये रोते नहीं है कि हमें इंसान क्यों नहीं बनाया, ये नहीं कहते चार हमें पांव क्यों नहीं दिए, चार क्यों है हमारे पास, चार क्यों नहीं है और दो क्यों है, बल्कि क्या है हर एक को अपनी तस्बीह जो है और अपनी नमाज का तरीका जो है वो मालूम है। गोया के ये अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हैं और अल्लाह की अताअत पर राजी हैं। अब मेरे और आपके सामने सवाल क्या है, ये जितनी आयात मैंने और आपने पढ़ी हैं अब तक कुरान की और खास तौर पे जो आजकल सूरत नूर का सबक मैं और आप पढ़ रहे हैं, क्या मैंने और आपने जो है वो ओढ़नियां ओढ़ ली, क्या मैंने और आपने जो है अपनी जेबो जीनत की हिफाजत करनी शुरू कर दी, क्या मैंने और आपने, हम उन लोगों में से हैं, यखदुदना मिन अबसारहिन्ना व यहफजना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। हम तो कहते हैं कि नहीं बड़ा मुश्किल है, अभी बड़ा मुश्किल है ना, और हम क्या करते हैं, क्या अब जाते आते हुए इजाजत लेते हैं लोगों के घरों में जब जाते हैं, क्या हम सलाम करते हैं, हम क्या करते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान की पैरवी करते हैं और अल्लाह ताला बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी फइन्नहु यामुरु बिल फाहशाई वल मुनकर। कहीं जो सोसाइटी में उरियानी और फहाशी जो फैल रही है उससे मेरा और आपका हिस्सा तो नहीं, मेरे और आपके फैशन का, लिबास का, शादी ब्याह की जो मेरी आपकी तकरीबात है उनका, मेरे और आपके घर का, मेरे और आपके वजूद का, अल्लाह की नाफरमानी जो सोसाइटी में हो रही है जिसका मैं और आप कहते हैं कि दुनिया में बहुत है, उसमें मेरा और आपका हिस्सा कितना है। ये है बात कि परिंदे तो अपनी नमाज को जाने और अपनी तस्बीह को जाने, और वो इंसान जो अशरफ अल मखलूकात में से है वो अपने आप को अल्लाह के आगे क्यों नहीं झुकाता, आखिर मैं और आप कब झुकाएंगे अपने आप को ना। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, लोग जो कुछ भी करें इससे अल्लाह बखूबी वाकिफ है, असल हाकिम तो अल्लाह है। परिंदे जब अल्लाह की बंदगी करते हैं तो इंसान तू शिर्क क्यों करता है, तू अपने जैसे इंसानों के आगे क्यों झुकता है, तू जो है वो मज़ारों पर जाकर अपने सर को जो है वो क्यों झुकाता है। सुफयान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्बीह के ये मानी बताए कि उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज आसमान जमीन सूरज और चांद और कुल सैयारे और सितारे और जमीन के अनासिर आग पानी मट्टी और हवा सबको खास खास कामों के लिए पैदा किया है, और जिसको जिस काम के लिए पैदा किया है वो बराबर उस पर लगा हुआ है, उससे बाल भर भी वो उससे सरे मुंह खिलाफ नहीं उसके करता। तो ये जो उसकी अताअत है ना, उसी को अल्लाह ताला ने इन चीजों की तस्बीह की है, कहा है। तो अब जब इन सब चीजों में अल्लाह ने इतना फहम और शऊर दिया है कि कुल्लुन कद अलिमा सलाता, कि उनको अपनी नमाज का तरीका पता है, उनको अपनी तस्बीह का तरीका पता है, फरिश्ते हैं तो उनका तरीका और है, परिंदे हैं तो उनका इबादत का तरीका और है, क्योंकि आप पढ़ ही चुकी ना आता कुल्ल शैन खलकहु सुम्मा हदा। तो अब जो इंसान है क्या वो अल्लाह की बंदगी और अताअत कर रहे हैं, और फिर मैं और आप कहते हैं कि मक्का के लोगों ने कुफ्र कर दिया, मदीना के लोग मुनाफिक थे, अब थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ के अपना जायजा लें, मैं अपनी जिंदगी को देखूं और आप अपनी जिंदगी को देखें, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, लोग जो कुछ करें इससे अल्लाह बखूबी वाकिफ है, अल्लाह को खुद पता है और बखूबी पता है कि लोग क्या कर रहे हैं। और जब देखें अल्लाह अलीम है तो अल्लाह की गिरफ्त से तो कोई नहीं बच सकता ना। आप पेपर हल कर रही हैं, जरूरत नहीं है कि टीचर आपकी क्लास में मौजूद हो, है ना, अब जरूरी नहीं है कि पहले दिन आपको बताने की जरूरत थी, क्योंकि चलाक वही अपने आप को समझता, तैयारी की यानी कि वो दाएं बाएं देखे तो अपना पेपर अच्छा हल कर ले, है ना। ऊपर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई किताब खोल ली, नोट्स खोल लिए। और अगर आपको बात कह दी जाए कि आपने अब नोट्स नहीं खोलने, आप सिर्फ कुरान नाजरा देख सकती हैं, या वो भी नहीं देख सकती, आपने अपनी याददाश्त से करना है। आपको होम असाइनमेंट दे दी जाती है, कभी आपने देख के करनी है, और ज्यादातर आप लोग जबानी करते हैं। तो अब उसमें जो है टाइम की एक लिमिट है, या जो है वो देख कर नहीं करनी। अब मुख्तलिफ लोगों के हो सकता है रवैये मुख्तलिफ हो, है ना। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, लोग जो कुछ करें अल्लाह इससे बखूबी वाकिफ है। कायनात क्या कर रही है, परिंदे क्या कर रहे हैं, और इंसान क्या कर रहा है। और अब आप आम लोग नहीं हैं। अगर अब भी मैंने और आपने अपने ऊपर अल्लाह के अलीम और बसीर होने के पहरे ना बिठाए, अब भी मेरे और आपके दिल में अल्लाह का डर और खौफ ना पैदा हुआ, अल्लाह की वो खशियत पैदा ना हुई जो इस कुरान का मतलूब है, तो कोई जरूरत नहीं है पेपर देने की और होम असाइनमेंट करने की। आप हर वक्त अपनी जिंदगी में पेपर देती हैं, मैं हर वक्त अपनी जिंदगी में पेपर देती हूँ। दूसरों को नहीं पता होता, अल्लाह को पता होता है मैं क्या कर रही हूँ ना। तो ये पहरा जो है ना, मुझे और आपको अपने ऊपर लगाना है। और जो इस पहरे के लगाने में जितना जो है वो कामयाब है, जितना बेहतरीन उसने ये पहरा लगाया है, उतना ही वो बेहतरीन मुसलमान है, उतना ही उसने नूर लिया है। अल्लाह और नूर उस्समावाती वल अर्द। फिर वो उन लोगों में है जो मस्जिदों को बात करते हैं, जिन्होंने घर को मस्जिद बना दिया, और जो अल्लाह की बंदगी में परिंदों की तरह मुसलसल लगे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला मुझे और आपसे पूछते हैं, और मुझे और आपको कहते हैं, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है बादशाही आसमानों और जमीन की। इससे मुराद क्या है? अल्लाह ताला मेरे और आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत जो है वो सवाल रख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात रख रहे हैं। और वो क्या है कि हर चीज अल्लाह की हम्द और तस्बीह इसलिए करती है, ये परिंदे, ये सूरज, चांद, सितारे और कायनात का जर्रा जर्रा, इसलिए कि उनको अल्लाह ही की तस्बीह करनी चाहिए, और उनको पता है कि आसमानों जमीन में हुकूमत अल्लाह की है, बादशाही अल्लाह की है, और वापसी भी अल्लाह की तरफ होनी है ना। उनको पता है इस कायनात के बनाने में, इसकी हुकूमत में किसी और का कोई दखल नहीं है। तो असल हाकिम जब अल्लाह है, तो अल्लाह का जो हुक्म है उससे वो जो है वो सरताबी नहीं करते, उससे वो हटते नहीं है ना। तो वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वइलल्लाहिल मसीर, जमीन और आसमान की बादशाही और हुकूमत अल्लाह की। अल्लाह हाकिम है, अल्लाह खालिक है। जब अल्लाह खालिक है तो आइए उसकी मखलूक बन जाएं, जब अल्लाह हाकिम है तो आइए उसके महकूम बन जाएं। ये दिल अब अल्लाह को दे दें, सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात की पूजा करते रहे, सारी जिंदगी रोते रहे, ये जिस्म जो था इंसानों के आगे झुकता रहा, आइए अब अल्लाह हाकिम है उसके महकूम बन जाएं। सरे नियाज झुकाया तो फिर उठा ना सके, ऐसा सजदा करें जहां कोई नजर ना आए, तो फिर भी जो सजदे हैं वो हमारे कभी जो है वो कजा ना हो। आइए अपनी जिंदगी को सजदा बना दें। किस बुढ़ापे का इंतजार है जो झुरियों वाला, जो खुद एक बीमारी, बजाते खुद बीमारी। जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी के लिए मोहताज हो जाता है, क्या उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं अल्लाह की हाकमियत को कबूल करने के लिए? क्या उस बुढ़ापे का जो जवानी के हुस्न को पुराना कर देगा, उसको फना कर देगा? क्या उस मौत का इंतजार कर रहे हैं जो जिंदगी की लज्जतों को खात्मा कर देगी? नहीं, बस बहुत हो गई, बहुत देर कर दी मैंने और आपने। सुबह का भूला शाम को जब घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, है ना। और मेरा और आपका तो एक और बुरा हाल है, जब बात होती है अल्लाह की इबादत की तो कभी कहते हैं बच्चे नहीं ना मानते, जब बात होती है अल्लाह का कहना मानने की, कुरान को नाफिज करने की, तो शौहर बेचारे का नाम लगा देते हैं। और जहां अपनी मर्जी होती है, जो अपना दिल नहीं चाहता, शौहर को भी हवा नहीं लगने देते, उसको खबर नहीं लगने देते, करते वो हैं जो मेरा और आपका दिल चाहता है। इसी तरह बच्चे, बच्चे हैं तो वालदेन के सर पर, उनके कंधों पे रख के बंदूक चलाते हैं कि वालदेन ऐसे हैं इसलिए अमल नहीं करते। क्या आप उतनी मजबूर हैं, क्या मैं इतनी मजबूर हूं जितनी कि बीबी आसिया थी, फिरौन जैसे जालिम के घर में रहते हुए जन्नत में महल बना लिया, क्या मैं और आप इतने मजबूर हैं जितनी कि बीबी मरियम थी, छोड़कर बस्ती को दूर निकल गई। जिस दिन नखला पजाहल मखादू, तो जिस दिन नखला की तरफ चली गई। लोग बातें कर रहे हैं, क्या मैं और आप इतने मजबूर हैं, क्या अल्लाह के नबी और सहाबा को दुनिया ने जितना मजबूर कर दिया था कि हिजरत उन्होंने कर ली थी, क्या मैं और आप मजबूर हैं, क्या कह सकते हैं मैं और आप मजबूर हैं? तो असल बात क्या है, ना करने के 100 बहाने, जब ना करना हो तो 100 बहाने, और जब करना चाहेंगे तो इस दिल पर अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत चल नहीं सकती। तो परिंदे अल्लाह की हुकूमत को कबूल करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वइलल्लाहिल मसीर, जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह की है और अल्लाह की तरफ लौटना है। ए इंसान, जब अल्लाह हाकिम, जब अल्लाह जो है वो हमारा माबूद है, तो मैं और आप उसके मखलूक क्यों ना बन जाएं, उसके बंदे क्यों ना बन जाएं? और जब मर के भी अल्लाह के पास जाना है ना, जब लौट कर भी अल्लाह के पास जाना है, तो फिर जो है सूरज जब लौटता है तो अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है, और इंसान कुछ देर दुनिया के मजे कर ले फिर जाएगा कहां? जाएगा कहां? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, है ना? तो मुझे और आपको अपने हालात पर, अपनी जिंदगी पर, अपने अमलों पर गौर करना चाहिए, और सूरत नूर और पूरा कुरान और एक एक आयत मुझे और आपको पुकार रही है कि कब सजदा करोगी, कब अतात करोगी, कब कब जो है अपने जिस्म को अल्लाह के आगे झुकाओगी। फिर अल्लाह ताला एक और मिसाल देते हैं, ये जो अल्लाह ताला कहते हैं ना यद्रिबुल अम्साल, कि मैं मिसालें देता हूं, यद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, आपने चराग की मिसाल पढ़ी, आपने शराब की मिसाल पढ़ी, आपने जुल्मात की मिसाल पढ़ी, आपने वत्तैरु साफात की मिसाल पढ़ी, और अल्लाह ताला कहते हैं अब भी समझते नहीं हो, आओ मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन, क्या तूने नहीं देखा, क्या तू गौर नहीं करता, क्या तू तदब्बुर नहीं करता? अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, युज़्जी चलाता है, हांकता है। अल्लाह किसको हांकता है? आपको बताया था जा जीम वाओ के मानी क्या होते हैं, ये थोड़ी चीज को भी कहते हैं, रद्दी चीज को भी कहते हैं, हकीर को भी कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता नरमी से हांकना, नरमी से चलाना। क्या तूने नहीं देखा कि हांकता है अल्लाह, चलाता है अल्लाह, क्योंकि बादल हल्के हल्के होते हैं ना, सहाबन सीन हाबा घसीटना, तो अल्लाह बादलों को जो है वो हांकता है, सुम्मा युअल्लिफु, फिर वो उनको जोड़ देता है। आप देखें कि बादल रुई के गालों की तरह हल्के हल्के, आपने कभी जहाज का सफर किया हो, आप बुलंदी से देखा करें, आप यूं लगता है, आप महसूस करेंगे कि आप बादलों के ऊपर आ गए, नीचे आपके अब बादल बादल है। अगर आपने कभी गौर नहीं किया तो जब आप सफर करें तो आप जहाज की विंडो के पास की सीट लें, फिर आप जरूर देखें, कायनात का मुशाहिदा किया करें, देखें, है ना? तो वहां पे आप देखें, देखते हैं कि बादल रुई के गालों की तरह हल्के हल्के उड़ते फिरते हैं, तो अल्लाह है जो उनको उड़ाता है, उनको हांग कर लाता है, सहाबन घसीट कर बादल, सुम्मा युअल्लिफु, हांग कर क्या करता है, फिर उनको आपस में जोड़ देता है। अल्लाह फा युअल्लिफु, मोहब्बत पैदा करना, उनको जोड़ देना, उनको मिला देना, फिर उनको जोड़ देता है। बेनहु, दरमियान उनके, अलग अलग थे वो रुई के गाले, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े थे, अल्लाह ने उनको आहिस्ता आहिस्ता हंका चलाया, फिर उनको बहम जोड़ दिया, फिर उनको क्या करता है जोड़ने के बाद, सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर उनको बना देता है ढेर, रा काफ मीम, किसी नज्म और तरतीब के बगैर किसी चीज को ऊपर नीचे आगे पीछे साथ जो है वो जोड़ देना, फिर अल्लाह ताला जो है उनको आपस में जोड़ देता है। अलग अलग टुकड़े थे, बहम उनको जोड़कर तय बर तय कर दिया। कितनी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अब उनको इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया, एक ढेर कर दिया उनको, फतरल वद का। फिर तू देखता है, फिर तू गौर करे तो क्या देखेगा, फतरल वद का मौदाल काफ, वो बारिश लगातार होती है, ऐसी बारिश आहिस्ता आहिस्ता होती है, देर तक होती रहती है। फिर तू देखता है कि अब उन्हीं बादलों से जो पहले रुई के गालों की तरह हल्के हल्के उड़ रहे थे, अल्लाह ने उनको जोड़ा, फिर उनको ढेर कर दिया, इकट्ठा मिला दिया। फिर तुम देखते हो कि उसके खौल में से फतरल वदका, कि तू देखता है कि बारिश यखरुजु मिन खिलाले, के उसमें से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं। अब आप देखें कि पहले वो अलग अलग थे, तो युल्लिफु बैनहु, जब वो ढेर इकट्ठा बन गए, जुड़ गए आपस में, यखरुजु मिन खिलाले ही, उनके दरमियान में से। मैंने आपको बताया था ना खिलाल क्या है, दो ऐसी चीजों का दरमियान जिनका आपस में ताल्लुक हो, एक ही चीज के मुख्तलिफ अज्जा जो आपस में जुड़े हुए हों। तो आप देख लें कि आपको जो पावर पॉइंट नजर आ रही है इसमें भी क्या है कि दो चीजें अलग हैं तो उनका दरमियान है ना, और अगर बादल हैं बिल्कुल इकट्ठे हैं तो फिर उनका दरमियान। तो खिलाल क्या है, आप दो दांतों के दरमियान जुड़े हुए होते हैं ना, दांत खिलाल करती हैं। आप वुजू करती हैं तो हाथ और पांव की उंगलियों के दरमियान खिलाल करती हैं। अब इसका मतलब है कि रुकूम, रुकूम ढेर, जो बादलों का ढेर है, जो तय बर तय है, जो आगे पीछे है, जो ऊपर नीचे है, उसमें से अल्लाह ताला ने जो है वो बारिश को नाजिल कर दिया। और आप जो है वो वाटर साइकिल, ये जो बारिश का साइकिल है, आप इसकी ये पावर पॉइंट देखें तो इसमें आप देखेंगी कि बारिश जो है वो कैसे होती है। आप ये देखें कि नीचे जो है वो पानी होता है, और पानी किस तरह बुखारात बढ़कर जो है वो उठता है, फिर वो बुलंदी पर जाता है ना, और फिर उसके बाद जो है अगर वो बहुत ऊपर चला जाता है तो वो बर्फ बन जाता है ना, और अगर जो है वो जरा नीचे होता है तो बादल की शक्ल इख्तियार करके वो पानी बनकर जो है वो दोबारा जो है वो रिसाइकलिंग उसकी होती है, दोबारा एक साइकिल की शक्ल में जो है वो जमीन पर आकर जो है वो बहना शुरू हो जाता है। आपको नजर आ रहा है ना कि वो बादल है, बादल में से बारिश के कतरे जो है वो निकल रहे हैं, और नीचे पानी में से पहले वो ऊपर गए हैं, फिर ऊपर से वो नीचे आ रहे हैं, और एक साइकिल है कि फिर वो ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पर भी अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि आसमान से पानी की कोई बूंद भी टपका दे, ये किसी की ताकत नहीं है, ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह का इख्तियार है कि वो हवाओं से बादलों को हांकता है, अलग अलग टुकड़ों को वहम जोड़ देता है, यूजी सहाबन, पहले उनको हांकता है, ऐसे लगता है बादल के पीछे पुलिस लगी हुई है, अल्लाह की फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते लगे हुए होते हैं, बादल उड़ रहे होते हैं मुसलसल, सुम्मा युल्लिफु बैनहु, फिर वो जुड़ जाते हैं, सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर उनका ढेर लग जाता है इकट्ठा, फतरल वद का, फिर तुम देखते हो कि बारिश यखरुजु मिन खिलालिही, इनके दरमियान में से पानी निकलता है, यानी अब्रे रहमत बरसाता है, जारी जमीन जलथल हो जाती है ना। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है, चाहे तो बादलों को रहमत बना दे और चाहे तो बादलों को जहमत बना दे, अजाब बना दे। फिर फरमाया फयुनज्जिलु मिनस समाई, और वो उतारता है, नाजिल करता है आसमान में से। ये जो समा है ना, मैंने आपको बताया था ये बुलंदी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये समा का लफ्ज पौधों के लिए भी होता है, हर वो चीज जो जमीन से बुलंद हो। यहाँ पे आसमान के एक मानी तो यही है कि आसमान से, दूसरे मानी है यहाँ पे आसमान के यानी बादलों से, कि वो बादलों से जो है वो नाजिल करता है, मिन जिबालिन, क्या यानी वैसे तो पहाड़ के मानी है, जबल की जमा जिबाल पहाड़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ बड़े बड़े बादलों को कहा गया है, कि बादलों में से जो बड़े बड़े बादल होते हैं, यानी आसमान से मुराद क्या है, एक मानी आसमान के, कि आसमान में जो पहाड़ होते हैं उनमें से वो जो है ना वो ओले नाजिल करता है। बर्फ के मानी क्या है, ओले के ना, एक मानी तो ये है। और ये बात भी सही है कि पानी जो बहुत बुलंदी पर ऊपर चला जाता है तो वो पहाड़ों के ऊपर जाकर जम जाता है, अल्लाह ताला पानी को फ्रीज कर देते हैं ताकि पानी महफूज रहे। ये अल्लाह ताला की कायनात के अंदर जो है, खुद अल्लाह ने ऐसी टैंकियां बनाई हुई हैं, मैं और आप तो इतना पानी इकट्ठा करके उसको महफूज नहीं कर सकते ना, तो पानी दोबारा जब ऊपर बुखारात बनकर जाता है तो पहाड़ों के ऊपर जाकर ये जो ग्लेशियर हैं, ये जो बड़े बड़े बर्फ के तोते हैं, उस शक्ल में पानी महफूज हो जाता है। तो बड़े बड़े पहाड़, आपने अगर कश्मीर का सफर किया हो या फिर आप जो है ये पहाड़ी इलाकों में आपने कभी सफर किया हो, जिसमें जो है गिलगित का इलाका है या ये जो है वो कागान की जो पहाड़ियां हैं, तो आप देखेंगे कि पहाड़, और आप तो आप बर्फ के इलाकों में रहती हैं, वैसे ही आप कनाडा को देख लें, ये तो यहाँ पे तो है ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। आपने कभी नियाग्रा फॉल को देखा? आप नियाग्रा फॉल का एक मुजाहिरा करें, जाके एक मुशाहिदा करें, आप जरूर जाएं। आप पहले भी आपने नियाग्रा फॉल देखी होगी, लेकिन खास तौर पे इस नजर से, और आप देखेंगी आप जाकर के बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के पहाड़ हैं, और किस तरह यानी ऐसे लगता है बादल हैं, आपको नीचे बादल नजर आ रहे हैं और उसमें से पानी और फिर कभी बर्फ ओले जो है वो आते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे भी है वो युनज़िलु मिनस्समाई, कि वो आसमान से, मिन जिबालिन फीहा, कि जिसमें जो उसमें पहाड़ हैं, मिन बरदिन, कि वो ओले नाजिल करता है, या फिर क्या है वो युनज़िलु मिनस्समाई, बात एक ही है कि वो नाजिल करता है बादलों से। आसमान के मानी क्या है? बादल हो गए। और समा का रूट क्या है? सीन मीम वाओ। और मैंने क्या बताया था कि सीन मीम वाओ जो है ये आसमान के लिए भी आता है, जो पौधे ऊपर होते हैं ना जमीन से उनके लिए भी आता है, और हर चीज जो जमीन से बुलंद है मौके की मुनासिबत से इसका तर्जमा उसके लिहाज से किया जा सकता है, कभी पौधों के लिए, कभी बादलों के लिए, कभी बुलंदी फिजा के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पे बादलों के लिए, कि वो नाजिल करता है बादलों से, मिन जिबालिन फीहा, तो गोया के बादलों में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ होते हैं, समझ आई? बड़े बड़े जो बादलों के पहाड़ होते हैं उसमें से क्या नाजिल करते हैं? मिम बरा दिन ओले, तो बर्द जो है ये ठंडक को कहते हैं, बारा दाल बर्द, और बर्द जो है इसके लफ्जी मानी क्या है? ठंडक, और इसका ओपोजिट है हर रुन, हर जो है ये गर्मी के लिए आता है, हरारत है ना, तो बर्द जब आएगा तो ठंडक के लिए आता है। और कभी ये लफ्ज जो बर्द का है ये ओलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जब ठंडक बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ठंडक बहुत ज्यादा होती है तो पानी ही ठंडा जो होता है ना, फिर वो ओले बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और बर्फ जब पिघलती है तो पानी बन जाता है। तो ये बात है, इसके माने ये है, वयुनज़िलु मिनस्समाई मिन जिबालिन फीहा मिन बर्द, और आसमान के पहाड़ों से वो ओले नाजिल करता है, यानी गोया के बर्फ को नाजिल करता है। तो सर्दी से जमे हुए बादल भी हो सकते हैं, जिसे मजाजन आसमान के पहाड़ कहा गया है, जमीन के पहाड़ भी हो सकते हैं जो आसमान में बुलंद हैं, जिनकी चोटियों पर जमी हुई बर्फ जो है हवा में इतनी ठंडी हो जाती है कि बादल में भी जो है वो एक बादल भी जमने लगते हैं, और ओलों की शक्ल में बादल जो है बरसने लगते हैं, यानी बादल से पानी की बजाय ओले क्यों बरसते हैं, इसके बारे में साइंसदान भी क्या कहते हैं, आज वो ये कहते हैं ना, इतना अरसा पहले अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि पहाड़ों की चोटियों पर जमी हुई बर्फ के असर से हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि बादल जो है ना वो जम जाते हैं, जब बादल जम उनमें एक इंजिमाद मुंजमिद हो जाते हैं, वो जमने लगते हैं, तो ओलों की शक्ल में भी बारिश होने लगती है, ये है इसकी वजह। तो अल्लाह ताला कहते हैं वयुनज़िलु मिनस्समाई मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन, और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें बुलंद है ओले बरसाता है। अच्छा, फिर ओलों से होता क्या है? ये जो बर्फानी जो बारिश होती है, जो जाला बारी होती है, इसे होता क्या है? फयुसीबु बिही मन यशाउ फयसरिफुहु अम मन यशा, फिर अल्लाह ताला इसके जरिए से दो काम करते हैं, फिर जिसे चाहता है इनका नुकसान पहुंचाता है। फयुसीबु, इसका रूट क्या है? स्वाद वो वा सौब, सौब के मानी आपने पढ़े थे तीर का निशाने पर पहुंच जाना, मुसीबत भी इसीलिए कहते हैं ना। तो अब क्या होता है कि तीर निशाने पे लगा जाके, कि अब ये ओले जो थे वो किसी की तो फसल पर लगे, और किसी के घर पर लगे, किसी के सर पर लगे, किसी के जिस्म पर लगे, और ओलों से फसलों की फसलें तबाह हो जाती हैं, घर जो हैं वो टूट जाते हैं, इंसानों पर जब ओले गिरते हैं, बर्फ बर्फ के बड़े बड़े पौधे गिरते हैं, तो इंसान जो है वो भी तबाह हो जाता है। کیونکہ اولوں کے پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چھپائے ہوئے آسمان پر ہے نا. اب پانی کی بجائے بارش کی بجائے جب اولوں کے پہاڑ بہنے لگے, اولوں کی سنگ باری ہونے لگی, تو پھر تباہی تباہی ہے نا. آپ نے کبھی سفر کیا ہو اور کسی کی گاڑی پر ژالہ باری ہوئی ہو, گاڑی میں ڈنڈ پڑ جاتے ہیں, راستے جو ہے نا راستوں میں کھڈ بڑھ جاتے ہیں, زمین جو ہے نا دھنس جاتی ہے اندر سے جب بڑے بڑے اس کے اولے جو ہے گرتے ہیں. اور اب تو یہ سائنسدان ہیں جو ہر وقت ماپ تول کرتے رہتے ہیں کہ کتنے انچ ہوئے اور کتنے بڑے ہوئے اور کس علاقے میں ہوئے. اور آپ دیکھیں کچھ علاقوں میں ہوتے ہیں کچھ میں نہیں ہوتے, ایک رائٹ طرف ہوتے ہیں تو لیفٹ طرف نہیں ہوتے, بعض اوقات آپ کے آدھے سے گھر کے پر ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے پر نہیں ہوتے. تو جس جہاں چاہتا ہے یُصِيبُ بِهِ مَن یَشَاء, اولے برساتا ہے. وَيَصْرِفُهُ وَيَصْرِفُهُ صرفا کا مطلب کا ہے, صرفا یُصَرِّفُ پھیر دینا ہٹا دینا, ان کی ضمیر بھی آ گئی تو ہٹا دیتا ہے. مَن یشاء جس سے وہ چاہتا ہے, یعنی جس کا وہ چاہتا ہے نقصان کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس نقصان سے بچا لیتا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالی ہے. کسی پر بارش اور اولے رحمت کے طور پر بھیجتا ہے اور کسی پر عذاب کی بارش اور عذاب کے اولے برسا دیتا ہے. فصلیں تباہ, کھیتیاں برباد, گھر تباہ, اور ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ سے شروع ہوتا ہے نا, تو مَن یَشَاءُ جو پہلا ہے یہاں پہ عذاب کی مثال ہے. سردی کے موسم کے بادل, تند ہوائیں, سخت ژالہ باری. اور یہاں پہ آپ دیکھیں برفانی موسم میں بچے بھی کہتے ہیں بڑے بھی کہتے ہیں وی ہیٹ ونٹر ہے نا. اور پھر یہ کہ جاب پہ لوگ نہیں جا سکتے, آپ گروسری کے لیے نہیں جا سکتے, حتیٰ کہ تکلیف بیماری پریشانی ہے اس کے لیے باہر نہیں جا سکتے. یہ دنیا اور یہ ممالک جو ترقی کے عروج پر ہیں ان کا بھی سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے, یہ بھی عاجز آ جاتے ہیں اور پہلے سے اعلان کر دیتے ہیں کہ اتنے انچ ہوگی برف باری اور گھر سے باہر نہ نکلیں, احتیاط سے نکلیں. اور پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال, اور اگر آپ اس کو بھی ویب سائٹ سے آپ گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں اور آپ دیکھیں گی کتنی ڈیتھ اس وجہ سے ہو جاتی ہے. یہ جو ژالہ باری ہوتی ہے, یہ جو ہر طرف سنو ہوتی ہے, آئس ہوتی ہے, گاڑیاں کتنی اسکٹ ہوتی ہیں, لوگ کتنے ہوتے ہیں, فریکچر کتنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایمرجنسی میں پچھلے سال میں بیٹھی ہوئی تھی جا کر, اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہر تھوڑی دیر میں ایک آتا تھا اور وہ سلپ ہو کے سنو سیزن میں اس کا فیکچر ہوا ہوا تھا, کسی کے بازو کا, کسی کے ہاتھ کا, کسی کے جسم کے اور حصے کا نا. تو یہ ہے سارا, یہ اللہ کا عذاب ہے, عذاب کی ایک شکل ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنے جو ہے وہ قریب کرتا ہے کہ یہ میرے قریب آتے ہیں, یعنی کسی کو دے کے کسی کو سے لے کے, کسی کو محروم کر کے کسی کو عطا کر کے اللہ اپنا قریب کرتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ یکادو سنا برقی ہی, قریب ہے کہ اس کی بجلی کی جو چمک ہے, سنا جو ہے وہ کیا ہے, بجلی کی چمک, قریب ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے اس سے کیا ہو, یذهبوا بالابصار, نگاہیں خیرہ ہو جائیں, نگاہوں کی روشنی ہی چلی جائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بادلی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ اب آنکھوں کی روشنی ہی لے چلی. آپ کو پتا ہے نا بادلوں میں چمکنے والی جو بجلی ہے اس کی شدت, اس کی چمک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آنکھوں کی بصارت بھی لے جانے کے قریب ہوتی ہے, نظر ہی کچھ نہیں آتا. بجلی چمکتی ہے, آپ باہر کھڑے ہوں, آپ دیکھیں نظر ہی کچھ نہیں آتا ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک ڈراوا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات بتاتے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ پچھلی قومیں جو تھیں نا, یہ اسی طرح یہ بادل, یہ ہوائیں, یہ بارش, یہ جو سنگ باری تھی, مختلف طرح کا جو عذاب تھا اس سے وہ قومیں جو نافرمان تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئی. تو تم کہاں پہ کھڑے ہو, اس بات پہ غور تو کرو. ایک دفعہ پھر اس پوری آیت کو دیکھ لیں کہ अलम तरा अन्नल्लाह युज़्ज़ी सहाबन, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है। युज़्ज़ी सहाबन, अल्लाह के फरिश्ते हैं हैं जो पहाड़ों को हांकते हैं। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर वो इनको बहम जोड़ देता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर वो उनका ढेर इकट्ठा कर देता है बगैर किसी तरतीब के। अब ढेर इकट्ठा कर दिया बादलों का। अब आप देखें आप साथ में इसकी जो है वो देखें आप इसकी पावर पॉइंट भी कि कैसे बादल उड़ रहे हैं, कैसे बादल चल रहे हैं। आप देखें ये कुदरत के कैसे नजारे हैं, कितना खूबसूरत सीन है ना ये कि ये समंदर है, समंदर के ऊपर बादल है, बादल उड़कर ऊपर जा रहे हैं तो पानी जो है वो बादल बनता जा रहा है। अब ऊपर से फिर जो है वो बारिश होगी या फिर ये है क्या होता है कि अब आप ये देखें कि आपको नजर आ रहा है ये बर्फ गिर रही है ना, ये बर्फ गिर रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मुझे और आपको अल्लाह के करीब करती हैं। सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतर अलवदका, फिर तुम देखते हो कि वो ढेर को क्या बना देता है। पहले बादल थे उनको इकट्ठा किया नंबर दो, नंबर तीन उनको बादलों का ढेर बना दिया। अब ये देख रही है ना आप साथ साथ है ना कैसे बादल जो है वो चल रहे हैं। फतर अलवदका यखरुजू मिन खिलालिही, फिर तुम देखते हो कि इसके खौल में से बारिश के कतरे टपकते चले आते हैं। अब देखते जाएं साथ साथ आयतों को भी देखें, साथ साथ आप पावर पॉइंट भी देखें, क्या लुत्फ है। और देखें ये साइंस ने आज चीजों को इकट्ठा कर दिया, इतने साल पहले अल्लाह ने कुरान में बताया। और मेरा और आपका ईमान साइंस का मोहताज नहीं है, मुझे और आपको तो बातें समझ में नहीं आती ना, समझ में ना भी आए तो इतना ही काफी है कि मेरे अल्लाह ने ये बात कही है, समय नवाताना। और ये था सहाबा का ईमान। और आज मैं और आप ये ना हो जाए वो ना हो जाए उस चक्कर में रहते हैं। तो ये बादलों का चलना, फिर क्या है कि बारिश के कतरे हैं कि टपकते चले आते हैं। फयुनज्जिलु मिनस्समाई मिन जिबालिन, और वो नाजिल करता है आसमान से। मिन जिबालिन फीहा, जो उसमें पहाड़ों की तरह हैं। मिन बरदिन ओले, फयसीबु बिही मन यशाउ, फिर वो जिसे चाहता है वो ये पहुंचाता है ओले, यानी बहुत से घर जगहों पे इतनी तबाही होती है कि सब वहां पे निजामे जिंदगी बंद होकर रह जाता है। फयसरिफुहु अम्मन यशा, और जिसे चाहता है इनसे बचा लेता है। यकादु सना बर्क़ ही, करीब है कि बिजली की चमक जो है वो उड़ा ले जाए, उचक ले जाए। बिल अबसार, निगाहों को नजर ही कुछ नहीं आता। युकल्लिबुल्लाहु लैल वन नहार, रात और दिन का उलट फिर वो ही कर रहा है। इन फी ज़ालिका लइबरतल उलिल अबसार, बेशक इसमें एक सबक है। इन फी ज़ालिका लइबरतल उलिल अबसार, बेशक इसमें एक नसीहत है आंखों वालों के लिए। अब यहाँ पर युकल्लिबुल्लाहु लैल वन नहार, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में। किसी की ताकत नहीं कि रात में दिन जाहिर कर दे, दिन में रात को नमूदार कर दे, है ना, मिनट या सेकंड का फर्क ही कर दे। अब ये देखें ये जो महकमा मौसमियात है ये बहुत सी मशीन गोइयां करते हैं, इतनी बर्फ होगी पूरा नमक बिक जाता है, दुकानें खाली हो जाते हैं और अगले दिन एक जरा सी भी जो है ना वो बर्फबारी नहीं हुई होती, इतनी बारिश होगी कोई बारिश नहीं होती। तो इनकी सारी जो साइंस है ना वो धरी की धरी रह जाती है, सारी इनकी दूरबीने, सारा इनका निजाम जो है वो धरा का धरा रह जाता है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये तमाम बातें, ये जितनी मिसालें ऊपर बयान की गई हैं, ये रात और दिन का बदलना, ये बर्फबारी या बारिश का होना, ये बिजली का चमकना, ये परिंदों का उड़ना, ये समंदर के अंदर अंधेरे, ये शराब, ये नूर की जो मिसाल है कायनात के अंदर, और फिर पूरी सूरत नूर, और फिर पूरा कुरान, और फिर पूरी कायनात। इन नजीजा लिका लाइब्रत लिल उलिल अबसार, इसमें आंखों वालों के लिए एक सबक है। इब्रत किसे कहते हैं? इब्रत आयन बारा, उबूर करना, गुजर जाना। असल में आयन बारा जो है इसके मानी क्या हैं कि एक हकीकत से दूसरी हकीकत तक अबूर करना। तो वो लोग जो नजर रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचते हैं, एक मिसाल को, एक वाक्य को हकीकत से उसका लिंक कायम करते हैं। वो जाहिरी चीज के अंदर मानवी सफर करते हैं, ज़हनी सफर करना। अच्छा अब आप देखें कि कैसे कैसे आप करेंगे ये सफर। इबरत जो है ना, ये इबरत इंसानियत का जौहर है, इबरत हासिल करना। जिस इंसान के अंदर ये इबरत नहीं है ना, कि वो इबरत हासिल नहीं करता, वो तो हैवान है। वो आंख जो जाहिर के अंदर बातिन को ना देख सके, वो शख्स तो फिर अंधा है ना। मैं आपको मिसाल देती हूँ। शफीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत मुझे कोई नसीहत करे। उन्होंने पूछा क्या तेरा बाप जिंदा है, कहने लगा कि नहीं। कहा कि तेरे लिए नसीहत जो है ना बेकार है, जो बाप की वफात से इबरत ना हासिल करे फिर उसको कौन सी चीज जो है वो इबरत दिलाएगी, तो तुझे क्या नसीहत करूं। तेरा बाप मनोमट्टी के नीचे चला गया, तूने अभी भी इबरत हासिल नहीं की, अब तुझे क्या नसीहत दूं मैं। अब आप देखें, मैं ये बादलों की मिसाल पर आप गौर करें कि आप ये भी हो सकता है कि हम जाहिर कोई देखें कि बादल थे, जैसे आपको अभी भी पावर पॉइंट नजर आ रही है, मुख्तलिफ पावर, 6-7 पावर पॉइंट अब इकट्ठी हैं कि बिजली की चमक भी नजर आ रही है आपको वो आसमान पर पहाड़ पर, फिर आपको बादल भी नजर आ रहे हैं, फिर आपको जो है वो बारिश होती हुई, फिर याला बारी भी, ये सारा कुछ समंदर, सब चीजें आप देख रही है ना। हम में से कुछ लोग बस यही देखते हैं, जो कि यहाँ के काफिर भी देखते हैं ना, और हम भी यही देखते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या देखते हैं कि जो अल्लाह रूई के गालों को इकट्ठा करके, उनको इकट्ठा कर देता है, उनको ढेर बनाकर उनसे बारिश और जो है वो याला बारी, बर्फबारी, और फिर जो है वो उसको रहमत या जहमत बना देता है, जो रात से दिन और दिन से रात कर देता है, वो इस जिंदगी के बाद मौत भी जरूर पैदा करेगा। वो उस जिंदगी के बाद आखिरत भी जरूर होगी। रात अंधेरा है ना, काली है, मौत की तरफ इशारा है, दिन की रोशनी है, जिंदगी दुनिया की तरफ इशारा है ना। तो रात और दिन का उलट फेर, इनका आना जाना जो अल्लाह कर रहा है, जो किसी पर बारिश बरसाता है, किसी पर बरसने नहीं देता, उनकी जमीन प्यासी रह जाती है, किसी पर बर्फ जो है वो बर्फ ही बर्फ किसी पर होती है और किसी को अल्लाह उससे बचा लेता है, ये डिफरेंट जो हालात हैं। तो कायनात का निजाम क्या है, क्या इंसान तू कुशा कुशा अपने रब की तरफ जो है वो जा रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तू गौर तो कर अपनी हकीकत पर। और फिर आप इस बात पे भी देखें कि रूई के गाले तो इकट्ठे होकर टप टप करती हुई बारिश बरसा दे, और इंसान तू अशरफ मखलूकात और तू लड़ता है, तेरा खून सफेद है, तू गला काटता है, रिश्तों की तमीज मिट गई, वालदैन जो हैं उनकी इज्जत खत्म हो गई, वो बोझ बन गए, वो भारी हो गए, कहां वो जन्नत, कहां वो जन्नत, जन्नत उनकी उनकी खिदमत करके सहाबा जन्नत की तलाश करते थे, कहां वो वालदैन अब ओल्ड हाउसेस में हैं, कहां बेटे लड़ते हैं आपस में, 7-7 बेटे, और वो लड़े कि कौन सा बेटा मां को अपने घर में रखे, कहां वो वालदैन अब बोझल हो गए, बोझ बन गए औलाद पर। तो ए इंसान, तू तो रूई का गाला भी ना बना, रूई के गालों से यानी बादल भी ना बना। और आप देखें कि बादलों से क्या होता है कि ये सामने आपको नजर आ रहा है बारिश होती है ना, और बादल के सुम्मा यल्लिफु बैनहु, इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं और आप इकट्ठे क्यों नहीं होते, बहन भाई इकट्ठे क्यों नहीं है, अब मोहब्बत और प्यार नहीं है, मेरी तेरी प्राइवेसी, ये मेरी चीज है, इतनी दौलत, इतना स्टेटस, बड़े बड़े घर, इतने खिलौने, इतने कपड़े, इतने जूते, और आपस में लड़ाइयां हैं घरों के अंदर। जितनी दौलत और स्टेटस बढ़ रहा है, मयारे जिंदगी गिर रहा है, मयारे जिंदगी बढ़ रहा है, मयारे आदमियत गिर रहा है। अब आपस में वो मोहब्बत और प्यार जो है वो नहीं है। कल एक औरत बात कर रही थी, मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि 8, 10, 12 बच्चे होते थे और वालदैन उनको पालते थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, बड़े अच्छी तरबियत, और 4 बच्चे हैं और 4 बेडरूम घर। और वो औरत ये कह रही थी कि असल में हमारा घर बहुत छोटा पड़ रहा है ना, तो सोच रही हूं कि एक बच्चे को किसी रिश्तेदार के पास भेज दूं, कि वहां पे उनका घर काफी बड़ा है और अपनी ही बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, तो उनका भी मदद हो जाएगी, मुझे भी सहूलत हो जाएगी। मैं कभी उसके मुंह को देख रही थी, कभी मैं उसकी बात को सुन रही थी, और बस बड़ा बड़ा दिल चाहता है बाज़ुकात आप बहुत बोले, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप वो शख्स दुखों की इतनी दास्तान सुनाता है कि यानी कि मैं बड़ी मुसीबत और परेशानी में हूं ना। तो हमारी और आपका क्या हाल है कि अफसोस मैं तो आप बारिश का वो कतरा भी ना बने कि जो इकट्ठा होते हैं और फिर प्यासी जमीन को बुझा देते हैं। आइए मैं और आप सब इकट्ठे होकर, इन नमल मोमिनू ना इखवा या मरूना बिल मारूफी व यनहूना लिल मुनकर, मैं और आप इकट्ठे हों और इंसानियत प्यासी है, हदायत की मुतलाशी है, मेरी और आपकी मुंतजिर है, कोई मुझे और आपको, मैं और आप में से कोई मैं और आप उठे और उनके लिए बारिश बन जाएं, रहमत की बारिश बनकर उनके लिए हदायत का सामान पैदा कर दे, है ना। मैं और आप वो काम तो कर दें जो बादल करते हैं, और मैं और आप हैं अशरफ अलमखलूकात में से। कितना खूबसूरत है यह इंसान, कैसा घिनौना है इसका किरदार, कहीं मैं और आप तो उस किरदार का और कायनात की तारीकियों का हिस्सा तो नहीं है। युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार इन्ना फी ज़ालिका लइबरतल लिउलिल अबसार, आंखों वालों के लिए, दिल वालों के लिए, बसीरत वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। अगर इन आंखों से ये बादल देखे, बारिश देखी, ओले देखे, अल्लाह को ना पाया, तो फिर ये बारिश कैसी, फिर ये आंखें कैसे कैसी। नियाग्रा फॉल तो सभी जाते हैं, लेकिन जाकर फिर अल्लाह को कौन कौन पाता है। अच्छे अच्छे मनाजिर देखने का सभी को शौक है, वहां जाते हैं घूम फिर के, तस्वीरें बनाकर, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के, और बाद लोग वहां पे जाकर नियाग्रा फॉल के इर्द गिर्द जो मॉल हैं बड़े बड़े, वो कोई कहता है जी मैं तो बाथरूम का कारपेट जो यहाँ पे 20 का मिलता है, मैं तो जी 8 का ले आई। दूसरी कहती है मैं भी जाऊंगी नियाग्रा फॉल, वहां के मॉल की बड़ी अच्छी शॉपिंग है, इतनी सस्ती, और है ना बाजार में ही घूमते रह गए, दुनिया ही को दिल दे दिया, आखिरत की फिक्र ही ना पैदा हुई, आखिरत की तड़प ही ना पैदा हुई, है ना। तो आप देख लीजिए, इन नफीजा लिखा लाइब्रत उलिल अबसार, रात और दिन का उलट फेर वही कर रहा है, इसमें एक सबक है आंखों वालों के लिए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं परिंदों को, बादलों को, बारिशों को तुम देखते हो, वल्लाहु खलक कुल्ल दाबतिन मिम्मा, वही अल्लाह तो है जिसने पैदा किया हर जानदार को, वल्लाहु खलक वही अल्लाह जिसने पैदा किया कुल्ल दाबतिन हर जानदार को, मिम्मा पानी से। आपको ये ठाठे मारता हुआ इस वक्त पानी नजर आ रहा है पावर पॉइंट के जरिए, है ना। आप देखें कि आसमान है और नीचे क्या है कि पानी है, तो ठाठे मारता हुआ जो पानी है उससे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। और आज साइंस ये कहती है कि हर जानदार की जो इब्तदा है वो क्या है, पानी है। और दाबा, दाबा जो है ये जामे इस्म है, ये इस्म जामे है, इसका मतलब क्या होता है कि वाहे जमा हरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दब दाल भी बाबा, दब हर हरकत करने वाली चीज को कहते हैं, जानदार यानी इसमें अनाम भी शामिल है, इंसान भी शामिल है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जितनी भी शक्ल और सूरत का इख्तलाफ है और जो मुख्तलिफ किस्म की जो जानदार जमीन में पाए जाते हैं, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया और मैं माँ पानी से पैदा किया। और आज साइंस ये कहती है कि जैसे ऊपर गई ये यानी साइंसदान जो थे वो चांद पर गए और मुख्तलिफ जो सैयारे हैं उस पर गए, तो सबसे पहले जाके वो पानी ढूंढते हैं, कहते हैं अगर पानी है तो यहाँ जिंदगी ठहर सकती है, इंसान यहाँ पे आबाद हो सकता है, वरना नहीं। इतने साल पहले अल्लाह ताला ने ये बात कह दी। फमिनहुम मन यमशी अला बतनी, एक अल्लाह ने इतनी अनवाउ इकसाम की कुल हर तरह की चीजें पैदा की और एक पानी से, एक पानी से। फमिनहुम फिर उनमें से कोई कैसा है, कैसा है, मई यमशी जो चलता है, अला बतनी अपने पेट पर चलता है। आपको ये सांप नजर आ रहा है इस वक्त पावर पॉइंट पर, देखे कितना लंबा सांप है, और सांप के पौ नहीं होते, इसकी कोई टांगे नहीं होती, ये अपनी पेट पर चलता है ना। इसी तरह मछली है, जो मछलियां होती हैं वो भी पेट पर चलती हैं, है ना। आप में से बहुत से लोग जो है वो जाते हैं फिश एक्वेरियम और जाकर फिशेज को देखते हैं। एक दफा मुझे भी कराची जाने का इत्तफाक हुआ और वहां जाके मैंने जो है वो देखा, जहां पे मछलियां ही मछलियां होती हैं, इतनी खूबसूरत, वाकई जैसे वो लोग स्टार मछली कहते हैं ना अगर किसी को, तो उसमें से रोशनी निकल रही थी, डिफरेंट रंग, डिफरेंट साइज और डिफरेंट उनके अंदाज, कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की सनाई के बेहतरीन और खूबसूरत नमूने। तो मछली है, सांप है, वो पेट पर चलते हैं। वह मिन हूं मैं यमशी अला रिजलैन, और कोई ऐसे हैं जो के दो पाओ पे चलते हैं, है ना, दो टांगों पर, रिजलैन राजिम ला लाम। अब आप देखें कि ये आपको शुतुरमुर्ग नजर आ रहे हैं ना, तो ये क्या है इनकी, ये दो पाँव हैं, ये इस पर खड़े हुए हैं, इन्हीं पे ये चलते हैं, इसी पे ये भागते हैं। ये आपको मोर नजर आ रहा है, शुतुरमुर्ग है, फिर ये मोर है। मोर देखा है आपने जंगल में, मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो इतना खूबसूरत ये मोर जो आपको नजर आ रहा है, तो ये दो पाँव पर जो है ये खड़ा है। वमिन हूं मई यमशी अला रिजलैन, मिन हूं मैं यमशी आला अरबा। तो जो दो पाँव पे चलते हैं उसमें इंसान भी हैं, परिंदे भी हैं, बहुत से तुयूर है, तो दो पाँव पे चलते हैं। मिन हूं मैं यमशी आला अरबा, और बाज ऐसे हैं जो चार टांगों पर चलते हैं, है ना। अनाम जो हैं, जिसमें मवेशी गाय भेड़ बकरी भैंस और बहुत से जो जानवर हैं, आपने वो पावर पॉइंट देखी थी ना वो जो गाय की, तो चार पाँव पे, है ना। तो बहुत से जानदार हैं जो जमीन पर चलते हैं। वह यखलुकुल्लाहु मा यशा, जो कुछ वो चाहता है पैदा करता है। तो इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यखलुकुल्लाहु मा यशा के बहुत से ऐसे होते हैं जो दो और चार की बजाय उनके बहुत ज्यादा उनकी टांगे होती हैं, है ना। जैसे आप देखें कि हाँ, जैसे ये बहुत से कीड़े हैं, हशरात हैं, हाँ, तो ये सारे जो हशरात हैं, ये बहुत से हशरात ऐसे हैं जो कि चार से भी ज्यादा पाँव रखते हैं। केकड़ा है, मकड़ी है, बहुत से जमीनी कीड़े, बहुत से उनके पाँव होते हैं। आप, मैं एक दिन इंसाइक्लोपीडिया में देख रही थी कि इतने ज्यादा कि समझ नहीं आ रही थी कि कितने हैं, है ना। तो ये जमीनी कीड़े, तो यखलुकुल्लाहुमा यशा, जैसे चाहता है वो पैदा करता है। तो ये है इसका मतलब, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। एक होता है ताकत और एक होता है कुदरत, है ना। तो आप ये देखें कि ताकत और कुदरत जो है ना, इन दोनों में जो है ना वो फर्क है ना। ताकत तो अब आप इस वक्त पावर पॉइंट पे आपको बहुत से ऐसे कीड़े नजर आ रहे हैं, देखें इनकी कितनी टांगे हैं ना, बहुत ज्यादा है ना। अब आप देखें कि क्या इंसान के अंदर ये ताकत तो हर हम में से हर एक के पास है, लेकिन कुदरत इतनी नहीं है कि ऐसी चीज को पैदा कर सके, है ना। तो ये है इसका मतलब कि इसी तरह ये देखें, एक आपको ये जो नजर आ रहा है, और मैंने आपको होमवर्क दिया है, और आपका इसका होमवर्क क्या है, सूरत नूर का सबक का एक, कि आयात के मुताबिक आप खुद जाके ना जो है वो इंसाइक्लोपीडिया में देखें, आप जो है वो कोई ऐसी किताब जिसमें मुख्तलिफ चीजें ऐसे नजर आती हैं, इसी तरह आप जो है वो इंटरनेट पे जाके जो है वो देखें कि कैसे ये बारिश का सर्कल क्या है, ये चरिंद परिंद, ये हवाओं का चलना, ये परिंदों का उड़ना, ये चराग, ये सराब, इन चीजों को आप समझें। तो अल्लाह ताला के पास ये कुदरत है कि वो जिस चीज को चाहे वो जिस तरह जो है वो पैदा कर दे, है ना। तो इन सब से मुझे और आपको जो है वो इबरत जो है वो लेनी चाहिए। तो अब आप देखें कि ये साइंसदान जो हैं, जो इन्होंने इतनी तरक्की की हुई है, लेकिन उनके अंदर इतनी कुदरत नहीं है कि वो खुद जो है वो, हाँ, इंसान जो है वो खुद जो है वो अपनी मर्जी कर सके। जैसे देखिए पावर पॉइंट पे एक तस्वीर आप देख रही हैं, एक बच्चा है और इसकी कितनी हाथ पाँव हैं, आठ, आठ इसके पाँव हैं। अब आप देखेंगे ये है इस आयत का मतलब कि यखलुकुल्लाहुमा यशा, है ना, कि एक बच्चा उसके आठ पाँव, है ना। तो ये क्या चीजें हैं, ये इंसान के अंदर एक चीज अल्लाह की हैबत तारी करती हैं, अल्लाह का खौफ तारी करती हैं। आमतौर पर इंसान के दो पाँव होते हैं ना, आमतौर पे औरत एक बच्चा जनती है, और कहीं कहीं पांच पांच और सात सात और तीन तीन भी जनती है। आमतौर पे एक सर होता है और जब अल्लाह चाहता है तो दो सर होते हैं, बाज दो बच्चे पैदा हुए, तीन आपस में जुड़े हुए हैं, ट्विन्स हैं, है ना। अब इस बच्चे के आप देखे आठ पांव, तो यखलुकुल्लाहुमा यशा, अल्लाह जो चाहे करे, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सब कुछ करने पर कुदरत रखता है। अल्लाह के पास जो ताकत है, अल्लाह ताला अपनी ताकत का मसरफ भी जानता है और अल्लाह ताला जो है वो उसका इजहार करता है। और इंसान जो है उसके अंदर इतनी कुदरत नहीं है, इतनी इतना वो कादिर नहीं है कि जो चाहे वो करे। हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा था कि मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अल्लाह को पहचाना, है ना, कि जब मेरे इरादे टूट गए तो मैंने जो है वो अल्लाह को पहचान लिया, है ना। तो ये सारी जो आयात हैं, ये सारी जो मिसालें हैं, ये तौहीद के दलाइल हैं, ये जिंदगी बात मौत के दलाइल हैं। अल्लाह ताला ने कायनात को गवाह बनाया है, कायनात को गवाह बनाकर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये कायनात इस बात पर गवाह है कि अल्लाह है और अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल भेजा, उसकी आयात सच्ची, अल्लाह का कुरान सच्चा, और साइंस का तो तसव्वुर भी नहीं था। तो जो सच्चे अहले ईमान होते हैं वो क्या करते हैं, लकद अनज़लना आयातिन मुबय्यिनात, हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी हैं। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह जो है वो सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत देता है जिसे वो चाहता है, जो खुद चाहता है अल्लाह उसको दे देता है। मैंने आपको कल के सबक में ये बात बताई थी कि एक काफिर जो था, जो ड्राइवर था, जो गौता जन, गौते लगाने वाला था, तो उसने जब उसको पता चला कि जो अंधेरे होते हैं, जब पानी का सफर करें समंदर के अंदर जाएं तो अंधेरा, फिर गहरा अंधेरा, फिर अंधेरा और फिर रोशनी अंदर जाके, और बादल होते हैं तो बिल्कुल और रोशनी नहीं आती। तो उसने उसको पता चला कि मुसलमानों के कुरान में बहुत साल पहले अल्लाह ने ये बात बता दी थी। उसने कहा अगर ये सच है जो आप लोग कहते हैं तो मैं मुसलमान होता हूं। तो जब उसने उसको पढ़ा तो उसने कहा कि मैं मुसलमान होता, और वो मुसलमान हो गया। तो लोग आयतें पढ़ते हैं, आयतों को सुनते हैं तो काफिर मुसलमान हो जाए, और मैं और आप जो पैदाइशी मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए, यू आर मुस्लिम बाय चांस बट आई एम मुस्लिम बाय चॉइस। एक काफिर ने ये बात की थी अंग्रेज ने कि मुसलमानों तुम तो बाय चांस जो हो मुसलमान हो, मैं चॉइस के साथ मुसलमान हूं, सोच समझ कर हुआ हूं। और आप देखें कि वो मुसलमानों का लिबास पहनकर जो न्यू मुस्लिम है और जो मुसलमानों के काम है वो करते हैं, ना वो डरते हैं, ना वो दबते हैं, ना वो झुकते हैं, ना वो परेशान होते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत उनका करेक्टर और किरदार है और अमल करते हैं ना। और मुसलमान हमारा क्या है, आज का मुसलमान क्या है, आयात मुबय्यिनात पढ़ने के बाद, अच्छा अगर मैंने हिजाब ले लिया तो फिर मेरे ये खूबसूरत बाल कहाँ जाएंगे, और मेरा तो अगर मैंने अपने आप को छुपा लिया तो फिर मेरा पर्दा कहाँ जाएगा, है ना, यानी मेरे मुझे लोग क्या कहेंगे, पता नहीं फिर मेरी दोस्तियां ही खत्म हो जाएंगी, मुझे कोई दावत देगा कि नहीं देगा, मुझे दावतों में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, मैं खूबसूरत लगूंगी कि नहीं, मेरे हुसन की कोई तारीफ करेगा कि नहीं। अगर मैंने अल्लाह की आयात पर अमल कर लिया, अगर मैंने इस्लाम को पूरी तरह अपना लिया जैसे कि परिंदों ने अपनाया हुआ है, जैसे कि सूरज चांद बारिश और रात और दिन ने इस्लाम को अपनाया हुआ है, यानी अल्लाह की वो तो बंदगी कर रहे हैं, और ये जितने जो हैं वो चरिंद परिंद हैं, दाबा हैं, जो पेट पे चलते हैं, यमशी अला रिजलैन यमशी अला अरबा, जिससे वो चलते हैं और अल्लाह की रजा पे वो राजी हैं, तो वो तो डरते दबते नहीं है, वो तो अमल करते चले जाते हैं। तो फिर मैं और आप आज इतने साल गुजरने के बाद भी वैसे मुसलमान क्यों नहीं है, इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ऐ मौजे बला कुछ उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं, वो कोई दूर के लोग नहीं है, वो आप हैं, वो मैं हूं, वो हम हैं। आयात नाजिल होती थी, सहाबा आयात की जिंदा तस्वीर बन जाते थे, अमल करते थे, मैं और आप आयात पढ़ रहे हैं, और इतनी जिंदगी तो आयात को बिना पढ़े गुजार दी, और अब आयात पढ़ते हैं टेस्ट के लिए, नंबरों के लिए, और कभी कि चलो ठीक है, और मजा बड़ा आता है जब आयात पढ़ते हैं, कभी आंसू भी थोड़े बहा लिए, कभी रो धो भी लिया, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अमल के लिए तो फरिश्ते आएंगे जो इन पर अमल करेंगे ना, नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं लकद अनजलना आयातिन मुबैनात वल्लाहु यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तकीम, और तहकीक हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयात नाजिल कर दी हैं। अब आप देख लें कितनी आयात वाजे हैं, कितनी जबरदस्त है। तो इन सारी आयात से मुझे और आपको क्या करना चाहिए, अल्लाह को पा लेना चाहिए। तो अभी आपने पावर पॉइंट पे भी देखा ना कि दर्स के दौरान जो है एक हिंदू जो है वो यानी जब वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयात, अल्लाह का पैगाम जब वो सुनता है तो फौरन जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है ना। तो असल बात क्या है कि निशानियां ये जो है ना आयात मुबैनात, एक तो कुरान है पूरा का पूरा, दूसरा कायनात पूरी अल्लाह ताला की है ना, पूरी कायनात। तो अब इससे वो दिल होना चाहिए, अल्लाह नूर समावाती वलर्द, अल्लाह तो है पूरी कायनात का नूर, लेकिन वो दिल होना चाहिए जो उसे नूर लेकर कौकबुन दुरी बन जाए, चमकता हुआ सितारा मिसबाह बन जाए, जो अल मिसबाह फी जुजाजा अजुजाजा तू कान्हा कौकबुन दुरी उन यू कदू मिन शजरत मुबारका जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गर्बिया, है ना, कि नूरु नला नूर। ये है वो बात कि सारी वाजे वाजे आयात हैं, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और वो अल्लाह यह जो हदायत देता है जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। सीधा सिराते मुस्तकीम का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, कुरान का रास्ता, ये बड़ा खूबसूरत है, ये बहुत सीधा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो इसीलिए सहाबा को जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको इस्लाम का कबूल करना और अमल करना लम्हों का सफर था, सदियों का सफर नहीं था। मुझे और आपको तो साल भी जाते हैं सोचते हैं कि इस पे अमल करेंगे, फलाम मुझसे नाराज है मैं उसको मनाऊंगी, फलाम मुझसे मैंने मुझसे ये गलती हो गई मैं अपनी माफी मांगूंगी, मैं नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ूंगी, है ना, मैं हिजाब नहीं लेती मैं जिलबाब नहीं लेती मैं अब वो लूंगी, मैं बाहर निकलती हूँ तो जेबो जीनत का इजहार करती हूँ अब मैं इजहार नहीं करूंगी, है ना, मैं उरियानी और फहाशी जो है उसको फैलाती हूँ अब मैं नहीं फैलाऊंगी, मैं गीबत नहीं करूंगी, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, मैं अल्लाह की अतात करूंगी और मैं अल्लाह के रसूल की अतात करूंगी। परिंदे तो अल्लाह की अतात करें, बारिश तो अल्लाह की अतात करे, बादल अल्लाह का मुती हो, रात और दिन अल्लाह के आगे झुक जाए, तो इंसान जो तू अशरफुल मखलूकात है, जो मैं अशरफुल मखलूकात में से हूं, तो मैं क्यों ना फिर अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाऊं, ये दिल क्यों ना अल्लाह का मुती हो जाए। और अतात जो है वो किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, अल ईमानु अत-तस्दीकु माल कबूली वल इज़ान, ईमान की ये बड़ी खूबसूरत तारीफ है, मुकम्मल तारीफ, अल ईमानु अत-तस्दीकु माल कबूली वल इज़ान, ईमान तस्दीक करना है, मानना है कबूल करने के साथ, वल इज़ान सर झुकाने के साथ, यानी सिर्फ मानना नहीं है, दावा करना नहीं है, कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ वल इज़ान, ज़ाल ऐन नून इसका रूट है वल इज़ान का, कि उसके साथ कबूल करना भी है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको उन बेहतरीन लोगों में शामिल कर ले कि जो अपने आप को बदलते हैं, और जो नेकी का हुस्न ये है कि उसको फौरन कबूल किया जाए, और मुझे और आपको अपनी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों की एक फहरिस्त बनानी चाहिए और फिर उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। आजकल आप देखें आपके घरों के बाहर पत्तों का ढेर है, आइए अपने गुनाहों को इस तरह अलविदा कह दें, ये पत्तों का ढेर जो जर्द पत्ते हैं ना, कोई इनकी हैसियत नहीं है, हर तरफ मुड़े फिरते हैं, यहां तो मशीनें और गाड़ियां आ रही हैं ना इनको इकट्ठा करने के लिए। आइए इससे पहले कि फरिश्ते मुझे और आपको कहें कि चलो और मेरे और आपकी अल्लाह के यहाँ हाजिरी लगे, और फिर हिसाब किताब हो। और आपने कल के सबक में ये बात पढ़ी थी ना, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बड़ी जल्दी हिसाब लेगा, उससे पहले वो वक्त आए, आइए मैं और आप अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दें। والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك